हवेली लौटते समय रास्ते का खतरनाक मोड़। शाम 6:45। शहर की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। ऑफिस के बाहर काली एसयूवी पहले से चालू खड़ी थी। इंजन की गर्म गूंज जैसे इंतजार कर रही थी, बस अपने मालिक को घर ले जाने के लिए। विश्वनाथ धीरे धीरे बाहर आए। उनके चेहरे पर एक भारी थकान थी, जैसे पूरे दिन की फाइलें, मीटिंग्स, फैसले और उलझने उनकी भौहों पर बोझ बनकर बैठ गई हों। पीछे से तेज कदमों की आहट। मामा, विशाल भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की घबराहट रहती थी, जैसे किसी भीतर छिपे राज का बोझ वो ढो रहा हो। आओ बैठो, विश्वनाथ ने बिना ज्यादा बात किए पीछे का दरवाजा खोला। दोनों पीछे बैठे। ड्राइवर ने अदब से सिर झुकाया और कार शहर की भीड़ छोड़ते हुए हवेली की तरफ निकल गई। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, रात की शुरुआत वाली खामोशी, सिर्फ टायरों की मुलायम सरसराहट और कभी कभी सड़क पर आते हल्के झटके। कांच के बाहर दुकानों की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। आसमान में नीला सफेद धुंधलका उतर रहा था। कुछ देर बाद विशाल ने चुप्पी तोड़ी। मामा, आप बहुत थके लग रहे हैं। विश्वनाथ ने बस हल्का सा सिर झुकाया। दिन भारी था, घर पहुंचूं बस, 2 मिनट आंखें बंद कर लूं। उनकी आवाज में थकान ही नहीं, एक दबी हुई बेचैनी भी थी। विशाल ने उंगलियां आपस में फंसाईं, एक धीमी नर्वस हरकत। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, उसने धीमी मुस्कान से कहा, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं, एक अजीब सी घबराहट थी। कार अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। हल्का अंधेरा, सड़क पर कम गाड़ियां, पेड़ों की कतारें जिनकी परछाइयां रात के साथ मिलकर रास्ते को और डरावना बना रही थी। तभी विशाल ने आगे झुककर धीरे से कहा, मामा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। विश्वनाथ ने उसकी ओर देखा। हाँ बोलो, क्या हुआ? बस, 1-2 किलोमीटर आगे लेफ्ट में एक गली आएगी, वहां मेरा एक दोस्त रहता है, उसे कुछ देना था आज ही। अगर आप मुझे वहीं उतार दें तो मैं वहीं से उसकी चीज देकर सीधे हवेली पहुंच जाऊंगा। विश्वनाथ ने बिना शक किए कहा, ठीक है, उतार दूंगा, जल्दी आ जाना। हाँ मामा, 5 मिनट बस, विशाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांपी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक मोड़ आया। विशाल ने तुरंत कहा, ड्राइवर यहीं गाड़ी रोक दो। ब्रेक की हल्की आवाज, कार धीरे से किनारे लगी। विशाल उठा, दरवाजा बंद हुआ। ध्यान दिया जाए तो उसके कदमों में अजीब सी जल्दी थी। फोन कान पर लगाए वो सीधे अंधेरी गली में गायब हो गया। गाड़ी फिर आगे बढ़ी। अब कार में सिर्फ 2 लोग, विश्वनाथ और ड्राइवर। हवा में एक सदमा सा सन्नाटा फैल गया। विशाल के उतरने के बाद विश्वनाथ ने सीट पर सिर टिका लिया, आंखें बंद की। दिन भर का थकान भरा बोझ जैसे पूरे शरीर पर फैल रहा था। सड़क सुनसान, हल्का कोहरा, दूरी पर ट्रैफिक का कोई नामो निशान नहीं। तभी दूर से अचानक तेज हेडलाइटों का सफेद तेज चमकता गोला सीधे उनकी तरफ पड़ता दिखा। ड्राइवर चौंका, साहब सामने ट्रक। ट्रक तेज स्पीड में गलत लेन में चढ़ा था। संभालो, विश्वनाथ चिल्ला पाते उससे पहले ट्रक की लाइटें सीधे उनकी आंखों में पड़ी। ड्राइवर ने झटके से स्टीयरिंग मोड़ा, कार घिसटकर दूसरी तरफ फिसली। टायरों की चीख इतनी तेज की कान सुन, और अगले ही पल धड़ाम, कार सड़क के किनारे बने कंक्रीट बैरियर से टकराई। धातु के मुड़ने की डरावनी आवाज, कांच का बिखरना, झटका इतना भयानक कि विश्वनाथ आगे की तरफ उछल पड़े। सीने पर चोट, सांस जैसे रुक गई, उनके माथे से खून बहने लगा। कंधा सुन, हाथ कांपते हुए, ड्राइवर स्टीयरिंग पर झुका पड़ा था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। सड़क पर फैली धूल, पेट्रोल की बदबू, चीखती हवा, सब मिलकर एक भयानक सन्नाटा बना रहे थे। कई मिनट तक कोई नहीं आया, फिर दूर से 2 बाइक सवार रुके। अरे भाई, एक्सीडेंट, कोई जिंदा है क्या? दोनों भागे। किसी ने मोबाइल निकालकर फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया। एक लड़के ने कार की खिड़की तोड़ी, साहब, साहब सुन सकते हैं? विश्वनाथ की आंखें आधी बंद, सांसें टूटती हुई। भाई, इसे बाहर निकालो, जल्दी। 3 लड़कों ने मिलकर उन्हें कार से बाहर खींचा। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एक दूसरी कार में डालकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाया गया। हॉस्पिटल, सफेद रोशनी, भागती नर्सें, स्ट्रेचर के पहियों की आवाज, बेड नंबर 5, जल्दी, बीपी गिर रहा है, ओटी तैयार करो। विश्वनाथ अब कुछ नहीं समझ पा रहे थे, सब धुंधला,
सब फीका। हॉस्पिटल तक खबर। हॉस्पिटल के अटेंडर ने विश्वनाथ के फोन से आखिरी डायल नंबर पर कॉल किया। हवेली में इस समय रत्ना देवी पूजा वाले कमरे के पास थी। फोन बजा, उन्होंने उठाया। जी कौन? मैडम, आप विश्वनाथ जी को जानती हैं? उनके दिल ने जैसे एक धक्का खाया। हाँ, मैं उनकी माँ हूँ। मैडम, उनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल में लाए हैं, कंडीशन गंभीर है। रत्ना देवी के हाथ से फोन लगभग गिर गया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? उनकी सांसें अटक गईं, कंधे कांपने लगे। तभी पास से आर्यन आया। दादी, क्या हुआ? रत्ना देवी रो पड़ी। तेरे पापा, उनका एक्सीडेंट, वो हॉस्पिटल में। आर्यन का चेहरा एकदम सफेद। कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। आर्यन एक पल भी नहीं रुका, दौड़ते हुए बाहर निकला। पीछे से पूरा घर शोर से भर गया। औरतों की चीखें, श्यामली का हक्का बक्का चेहरा, शकुंतला की आंखों में आंसू, नौकरों की भाग दौड़। एक एक कर कारें निकली, सब हवेली से बाहर भागे। सड़क पर सिर्फ एक आवाज, डर। सिटी हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड के बाहर। आर्यन सबसे पहले पहुंचा, पसीने से भीगा चेहरा, सांसें तेज, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को हो रहा था। पापा कहाँ है? उसने रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से लगभग चिल्लाते हुए पूछा। नर्स घबरा गई। सर, उन्हें अंदर रोटी में ले गए हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं। कितनी चोट लगी है, बोलिए। आर्यन की आवाज में दहशत और गुस्सा दोनों थे। नर्स कुछ कह पाती उससे पहले रत्ना देवी, श्यामली, शकुंतला और बाकी परिवार भी पहुंच गए। रत्ना देवी के कलम कांप रहे थे, वो दीवार पकड़कर खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी। बेटा, अंदर ले गए इसे, उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उनका दिल टूट रहा हो। आर्यन ने उनका हाथ थामा। दादी, कुछ नहीं होगा बाबा को, कुछ नहीं। लेकिन उसकी खुद की आवाज में यकीन नहीं था। तभी ओटी की लाल बत्ती के पास एक डॉक्टर मास्क हटाते हुए बाहर आया। पूरा परिवार उसकी तरफ दौड़ा। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? आर्यन की आवाज टूट चुकी थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। चोटें बहुत गंभीर हैं, सिर पर गहरा घाव, कंधे में फ्रैक्चर, खून काफी बह चुका है। रत्ना देवी की आंखें भर आईं। डॉक्टर, बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी अगले आधे घंटे बहुत क्रिटिकल है। ये सुनकर पूरा परिवार वहीं रुक गया, बेचैन, डरा हुआ, हर सेकंड जैसे पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। लेकिन इस सबके बीच एक चीज सबसे अजीब थी, विशाल अभी तक नहीं पहुंचा था, उसका फोन भी बंद आ रहा था। आर्यन की भौंसी कुड़ी, वो पापा के साथ ही था, फिर कहाँ है? पहली बार ये सवाल हवा में उठकर एक शक का साया छोड़ गया। अंदर डॉक्टर जान बचाने में लगे थे, बाहर परिवार इंतजार में था, और दरमियान कहीं पर एक सच छुपा था जो आने वाले समय में पूरे घर को हिला देने वाला था।